ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कोणों में कोटि कोटि सष्टांग दंडवत प्रण की ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णु पाद श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि बार दंडवत प्रण की ज्ञापन करता हूँ। कल हमने सनातन धर्म के संबंध में कुछ बतलाया था कि सनातन धर्म का स्वरूप कृष्ण के प्रति प्रेम है, यही सनातन है। ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति जो स्वाभाविक प्रेम होता है उसी को वैष्णव धर्म, भागवत धर्म अथवा सनातन धर्म कहते हैं, अलग अलग नहीं है। इसलिए हमने बतलाया था जो जीव नित्य हैं, जीव माने आत्मा, और सबके नियंता प्रभु श्री कृष्ण नित्य हैं, और जीवों की भगवान के प्रति जो सेवा है यही परम धर्म है, नित्य सनातन धर्म। और धर्म यदि कुछ कुछ इसके अनुकूल है तो सनातन धर्म के सोपान है, अन्यथा उसकी विकृति है। हमारे यहां हिंदुओं में भगवान के प्रति जो निष्ठा दिखाई पड़ती है वो सोपान है। क्रमशः माता पिता की सेवा करते हुए, गुरुजनों की सेवा करते हुए धीरे 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 हम लोग उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, इसलिए वो भी मंद है। कल मैं बतला रहा था जो कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, हमारे यहां बहुत से ऐसे संप्रदाय है जो नहीं मानते हैं कृष्ण राम, जैसे आर्य समाज इत्यादि, उनको भगवान नहीं मानते, गीता भागवत नहीं मानते, सत्या प्रकाश इत्यादि मानते हैं। इन लोगों की बात क्या, बड़े बड़े योगी लोग, बड़े बड़े संत लोग भी कभी चक्कर खा जाते हैं कृष्ण तत्व में, भागवत में बतलाया तेने ब्रह्म विदाज आद कभे मुह्यंत जत सूरय, जिसमें मुक्त महापुरुष लोग भी ठीक से समय नहीं पाते, ब्रह्मा भी ठीक से निर्णय नहीं कर पाए। ये छोटा सा ग्वारिया गौओं के पीछे चलने वाला, बंसी बजाने वाला, लोगों के ब्रजवासियों का जूठा खाने वाला, ये परब्रह्म हो सकता है? नहीं समझता तो और लोगों की बात क्या। इसलिए मैं आप लोगों के सामने वाल्मीकि रामायण से एक कथा प्रसंग मैं ले रहा हूं, जो रुचकर भी होगा, तत्व का बोध भी होगा। एक समय भगवान श्री राम महाराज दशरथ के आदेश से, कैकेयी के आदेश से जंगल में गए। दंडकारण्य में सूर्पनखा आई, राम के रूप में मुग्ध हो गई। राम के इशारे से लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट लिए और वो रावण के पास में चली। मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदरी उसकी पत्नी थी, मैं लेना चाहती थी, किंतु उन लोगों ने हमारा निरादर करके नाक कान काट लिया। तुम भाई कैसा है जो हमारा बदला नहीं ले सकता? इसलिए दंडकारण्य से रावण सीता को चोरी कर लिया। राम लक्ष्मण बाहर गए, राम गए हिरण को पकड़ने के लिए और वहीं से मरते समय हाल लक्ष्मण कहा और सीता जी मानी नहीं, जबरदस्ती लक्ष्मण जी को भेज दिए और जाने के बाद में रावण ने हरण कर लिया सीता जी। फिर तो राम हासिते हासिते कहकर विलाप कर रहे हैं। हिरणों से पूछते हैं, सीता को देखा? गोदावरी नदी पर जाकर के पूछते हैं, गोदावरी तेरे यहां तो स्नान करने आती थी, उनको देखा? पेड़ पौधों से पूछ रही है, पंचवटी के पांच जो पेड़ हैं बट के उनसे पूछ रही, कहां गई सीता? विलाप कर रहे हैं। और उसी समय भगवान शंकर कैलाश से सती जी को लेकर राम के दर्शन के लिए पधारे। दंडकारण्य में ये सती जी कौन थी? दक्ष प्रजापति की छोटी और सबसे किशोरी और सबसे सुंदरी लड़की थी। लोगों के मना करने पर भी, इसके इच्छा नहीं होने पर भी औघड़ शंकर के साथ में इसने शादी कर दी। तो सती जी को लेकर के आए दर्शन करने के, और राम के इस विलाप को देख करके गदगद हो गए, आंख में आंसू आ गए। और बहुत दूर से परिक्रमा की, जिनकी लीला में कोई बाधा ना पड़े, बहुत दूर से परिक्रमा की और परिक्रमा करके अलक्षित जगह से साष्टांग प्रणाम किया। वह प्रभु आपकी कैसी लीला? सती जी ने कहा, प्रियतम आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? किसको प्रणाम कर रहे हैं? दो एक बात पूछने के बाद में इन्होंने बतलाया, मैं अपने इष्ट देव राम को प्रणाम कर रहा हूं। ये हमारे इष्ट देव हैं, दिन रात इनके नाम का मंत्र जपता हूं। ये आपके इष्ट हैं या दशरथ नंदन ये राम है? यदि आपके इष्ट देव पर ब्रह्म राम है तो इनको पता नहीं है ये सीता जी को हरण कर ले गया, रावण ले गया, तो मैं जानती हूं। ये रावण ले गए, और फिर ये ब्रह्म होकर के नहीं जानते, और परब्रह्म होकर के भी सीता जी की रक्षा नहीं कर सके, और सीता जी तो लक्ष्मी है वो भी नहीं रक्षा कर सकी, मेरी समझ में नहीं आता है ये राम कैसे हो सकते हैं। स्त्री के लिए बिलबिला रहे हैं चारों तरफ में, और पेड़ों से पौधों से पागल होकर के पूछ रहे हैं, विरह में कातर होकर के, मेरी सीता कहां है। तो शंकर जी सुन करके कुछ हंसे, ये इतने दिन संग में मेरी रही, इतनी हरी कथा तुमको सुनाई, फिर भी हमारे वचनों में तुमको शंका हो गई, ये कौन राम है, दशरथ कुमार है या परब्रह्म राम है। तो उन्होंने मुस्कुराया, मुस्कुरा करके, जो होनी है वही होई है, सोई जा राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। कुछ चिंतित हो गए, तो ये अच्छी बात है, यदि हमारे बातों में विश्वास नहीं है तो परीक्षा ले लो, यह है कि नहीं है। ये कह करके वो एक वट का वृक्ष था वहीं पर बैठ गए, और वो सती वहां से जहां राम विलाप कर रहे थे उनके सामने गई, और सीता जी का ठीक अविकल रूप बना दिया, और उनके जातों के सामने में खड़ी हो गई। किंतु राम ने उनकी तरफ में देखा नहीं, दूसरी तरफ में हाशीते हाशीते विलाप, सोचा जो देखा नहीं, तो फिर जिधर राम विलाप कर रहे हैं उधर में गई, फिर भी उन्होंने अनदेखा की। फिर तीसरी तरफ में गए, वहां भी गई, तो राम को दया आई, अरे माता जी आप यहां कहां, आप यहां कहां हैं, आपके पति देव भगवान शंकर वहां आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप यहां पर हैं। और उनको प्रणाम किया राम, ओ ये तो जान गए, हमको सीता नहीं समझा, और सीता समझ करके आनंद से आलिंगन करते वो नहीं किया, और सीता नहीं संबोधन किया, संबोधन किया माता, अब तो उनको ग्लानि हुई। और ये कह करके फिर रामचंद्र जी देखा क्या, रामचंद्र जी नहीं रहे, अंतर ध्यान हो गए, और फिर देखा जिधर देख रही हूं उधर ही राम सीता, जिधर में दृष्टि जाए देखा यहां राम सीता, यहां राम सीता, यहां राम सीता, सब समय देख करके प्रणाम किया, और उठी तो देखा तो फिर हार सीते हेतु कहां सा, अब तो डर गई, और गई शंकर जी जहां थे, शंकर जी ने पूछा, परीक्षा लिया, हे नाथ मैं क्या परीक्षा लूंगी, आपने जो कहा वो सत्य ही है, मैंने परीक्षा नहीं, झूठ भी बोला गुरु से, दो चीज देखो, गुरु की बात बिना विचार किए मान लेना चाहिए, तर्क फर्क उसमें कुछ नहीं, यदि सचमुच में वो गुरु है तो मान लो उसको, उसे नम्रता पूर्वक ये पूछ सकते हो जे प्रभु ये हमारी समझ में नहीं, छिपाओ मत, और फिर गुरु से झूठ बोलना मैंने परीक्षा नहीं, दो बातें हुई। वो कुछ गंभीर हो गए शंकर जी, और उन्होंने देखा ये सती ने हमें आर्य इष्ट देवी जो सीता हैं उनका रूप धारण किया है, अब तो ये मेरी मैया है, इसलिए मैया समझ करके उनको वहीं पर सती को अपनी पत्नी को प्रणाम किया, और ये मेरी पत्नी है ये भाव छोड़ दिया।
दिया सदा के लिए। अब हमारी इनमें इष्ट बुद्धि रहेगी, सीता की बुद्धि रहेगी, ये मेरी माता है। देवताओं ने फूल बरसाया शंकर जी के ऊपर में, कहा और आकाशवाणी हुई, आपके समान और कोई जगत में नहीं है जो ऐसी प्रतिज्ञा कर सके, धन्य आप। सती ने पूछा आपने क्या प्रतिज्ञा की? कुछ नहीं बोला, गंभीर हो गए और अपने आश्रम कैलाश की तरफ में चलने लगे। जब कैलाश में पहुंचे तो सती को स्थान जहां पहले देते थे बाएं तरफ, अब बाएं तरफ ना दे करके सामने किया, माता को सामने आश्रम देना चाहिए, गुरु को सामने से प्रणाम करो, कृष्ण को विग्रहों को बाएं रख करके उनको प्रणाम करनी, ये सब विधियां हैं। तो शंकर जी ने उनको सामने आसन दिया और बैठे। ओहो, अब मैं समझी, हमने सीता जी का रूप बनाया था इसलिए अब माता के रूप में हमको देखते हैं, पत्नी के रूप में, अब इस शरीर से कोई प्रयोजन नहीं, अब ये शरीर को धारण करने में कोई भी लाभ नहीं। और शंकर जी समाधि में बैठ गए हजारों वर्षों की, वो कहां कौन कहां है ये भी भूल गए। तो देखो याद रखना, गुरु करो छान कर पानी, गुरु करो जान कर पानी पियो छान कर, पानी कैसे पियो छान कर, डिस्टिल्ड वाटर, गंदे पानी मत पियो, और गुरु भी जैसे तैसे को गुरु मत कर लो, गुरु गुरु में गुरुत्व होना चाहिए जो अपने हृदय से निकाल करके कृष्ण को तुम लोगों के हृदय में दे सके, उनकी भक्ति दे सके, ऐसा गुरु होना चाहिए जो हमारे मन के मैल को निकाल सके। मन का मैल क्या है? संसार की प्रति आसक्ति और बेकार के धर्मों में रुचि, जो धर्म नहीं है, अधर्म कुधर्म है, इन सब में रुचि, ये सब को मन को दूर करते हैं। आप लोग कहीं सुने होंगे साईं बाबा भगवान है, भक्त मान लो कोई हर्ज नहीं, भक्त मान लो, भगवान है, भगवान को दाढ़ी मूछ नहीं होती और पकती नहीं, दांत नहीं टूटते और फिर मरते नहीं। एक बाबा साई बाबा जी तो पहले मर गए और ये साई बाबा भी अब उम्र के हो गए, जेल में भी गए, इसलिए ऐसे तैसे धर्मों के प्रति जो भगवान है ऐसा मत मान, भक्त की दृष्टि से उनको तुम आदर्श कर सकते हैं, हम लोग भी आदर करें, किंतु भगवान के लिए तो भागवत में, वेदों में, शास्त्रों में ही उल्लेख पहले से ही है, कलयुग में ये भगवान आएंगे, सत्ययुग में ये आएंगे, त्रेता में आएंगे, द्वापर में आएंगे, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् स्याम्। तो लिखा गोवर्धन पर्वत को उठा लेंगे, साई बाबा उठा लो तो उठा लेंगे, कृष्ण ने आग खाई, जलती हुई अंगारा उनके मुख में दे दो तो देखो जैसे वो कैसे रहते हैं जी। तो कृष्ण भगवान के लक्षण होते हैं, राम ने समुद्र को सुखा दिया, धनुष बांट दिया, हलचल मच गई और निकल करके बोले जी प्रभु आप फूल बंधवा दिए, हमको मत सुखाइए। राम ने कैसे कैसे, कृष्ण ने कैसे कैसे किए, भगवान के कैसे किए। नृसिंह भगवान जी आए जो दिन में नहीं मरे, रात में नहीं मरे, महीने में नहीं मरे, वर्ष में नहीं मरे, शाम को नहीं मरे, रात में न मरे, दिन में न मरे, आकाश में न मरे, पाताल में न मरे, और क्या हुआ, अस्त्र से शस्त्र से न मरे, और शाम के समय में कैसे झट नखों से विदीर्ण कर उसे मार। भगवान के लक्षण होते हैं, शास्त्रों में लिखे गए, इसलिए गुरु इन सब से रक्षा करता है। मन के मैल जो संसार में आशक्ति है दूर करते हैं। आशक्ति ठीक है, आशक्ति होनी चाहिए कहां? कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में आशक्ति को लाओ। संसार से आशक्ति को हटा करके कर्तव्य कर्म करो। संसार के प्रति तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, इसलिए सब करो। ये गुरु जी का कार्य, तो गुरु जी को करो। इसके बाद में अविश्वास करोगे और गुरु से झूठ बोलना अपने दोष को छिपाने के लिए, ये भी अभी अपराध हुआ। क्या शंकर जी तो परम भागवत भगवत स्वरूप हैं, उन्होंने सदा के लिए माता के रूप में ले लिया, पत्नी के रूप में। वो यज्ञ स्थली में गई अपने पिता के यहां और वहीं पर अपने शरीर को जोगाग्नि से जला करके खत्म कर दिया। दूसरे जन्म में हिमालय की लड़की बनी और उमा होकर के कठोर तपस्या करके तब फिर शिव को पाए। तो उसमें सती जी जो सब समय कृष्ण के साथ में है, शंकर जी के साथ में रहते, ऐसे बड़े महात्मा, ऐसे कृष्ण तत्व को जानने वाले हरिहर एक आत्मा, उनको भी भ्रम हो गया। उनको तो बात छोड़ो, गरुड़ जी भगवान नारायण के वाहन हैं, वाहन है। कभी कभी कृष्ण भी के भी वाहन बनते हैं। एक समय राम है, तो आध घंटा होएगा। एक समय गरुड़ जी ने राम और लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने नागपाश से बांध दिया। टस से मस नहीं हो सके, सारे अंगों में नागों ने उन्हें बांध लिया और वे बेहोश हो गए। यदि ऐसे बेहोश रहेंगे तो दूसरे दिन हम मर जाएंगे, बचने की कोई संभावना नहीं। हनुमान एकाएक एक छंप दिया और कूद करके गरुड़ जी जहां थे वहां पर पहुंचे और उनको लेकर के उपस्थित हुए। जैसे प्रभु के ऊपर में संकट पड़ा है, चलो तुम्हारे जाने के साथ ही साथ में नाग लोग छोड़ करके भाग जाएंगे। वहां से आए, ज्यों ही गरुड़ जी वहां पर पहुंचे, तभी नाग जो थे उनको देखा और देख करके सब उनको छोड़ करके भाग गए और राम और लक्ष्मण जी छोड़ गए। गरुड़ जी ने सोचा हमारे देखते ही ये नाग भाग गए और हमारे परब्रह्म जो भगवान राम है और उनको देख करके भी नहीं भागे और उनको बांध रखा, तो ये हमारे वो भगवान राम नहीं शायद है। शंका हो गई, संदेहात्मा विनश्यति। गुरु के चरणों में भगवान की बातों में शंका मत करो, समझने की चेष्टा करो, शंका मत करो। फिर गरुड़ जी को तो हो गया मोह, लौटे, चित्त चंचल हो गया, ये राम है या नहीं है, परब्रह्म है या नहीं है। जब मन को शांति नहीं मिली तो कैलाश गए और शंकर जी उसी समय इनको देख करके उठे और बोले, जैसे मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, अभी आपको बतलाने के लिए हमारे पास में समय नहीं है, तुम जाओ काकभूषुंडी के यहां, पक्षी पक्षी की भाषा जानते हैं, इन्हें वो तुमको समझाएंगे। ये तो खगराज हैं, पक्षियों के राजा गरुड़ जी, और कौवा सबसे
निकृष्ट है,
निकृष्ट सबसे नीचा पक्षी है, इसलिए उनके पास में जाएं, उनके शरणागत हों, इनका अभिमान दूर हो। गुरु यदि ब्राह्मण न भी हो कोई बात, साधारण विधि यह है, ब्राह्मण हो सन्यासी हो गुरु करो, नहीं है गृहस्थ भी है तो ब्राह्मण के पास में क्षत्रिय और दूसरे लोग जाकर के दीक्षा हरिनाम ले, ये स्मार्ट विधि है। और वैष्णव विधि क्या है, शास्त्रों की विधि भागवत रामायण की, शूद्र कुल में भी यदि गुरु उत्पन्न हो, काला भी हो कलुठा भी हो कोई बात नहीं, कृष्ण तत्व को जानने वाला वो गुरु है। कृष्ण तत्व की अनुभूति है, संसार से वैराग्य है और शब्द ब्रह्म में परिपक्व है। शब्द माने वेद शास्त्र में जितनी प्रकार की शंकाएं शिष्य को हो सकती है उस समस्त शंकाओं को दूर कर सकते हैं, गुरु का ये भी एक लक्षण है। और संसार से विरक्ति भी, ये गौण लक्षण। मुख्य लक्षण क्या है, भगवान की अनुभूति हो, भजन ऐसा परायण हो जो भगवत तत्व को जानने वाले, ऐसा गुरु ही तो कृष्ण को दे सकते। इसलिए वहां पर जाति पाति की बात नहीं, जो कृष्ण का भजन करता है सिखला सकता है उसे हरिनाम और पूछा। गरुड़ जी को उन्होंने कहा जे जाओ वहां पर जाओ, वहां गए देखते ही वो कागभूषुंडी जी ने पक्षियों के राजा आए हैं, बड़े सम्मान के साथ उनको प्रणाम किया। बोले जैसे मैं आपको प्रणाम करता हूं, शंकर जी ने कहा मैं एक विशेष बात के लिए आया, आप कृपा करके हमारा संदेह दूर की। शंकर जी को समय नहीं था, चले गए। तब उन्होंने कहा जी बैठिए, तो वो उनको बैठाया, मुझे स्नान कीजिए भोजन कीजिए इसके बाद आइए मेरे पास। तब आए तो अपनी कथा कही, जो कहीं रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, अभी बालक थे, ठुमक ठुमक करके चलते थे, कागभूषुंडी जी काग हो करके आए, और कभी राम के पास में जाते हैं तो राम उनको पकड़ने के लिए जाते हैं, और जब और निकट जाता है तो भाग करके डरते हुए भागते हैं पीछे। फिर रामचंद्र जी उनको मालपुआ दिखलाते हैं, फिर खाने के लिए जाते हैं, जब निकट में आते हैं तो वो भाग जाते हैं। इनको हो गया मोह, और इतने में रामचंद्र जी ने हंस दिया और उनके मुख में चले गए, और मुख में अनंत कोटि वर्षों तक घूमते रहे, घूमते गामते 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 ब्रह्मलोक देखा और क्या क्या लोक देखा, आदि अंत नहीं पाए। फिर एक अयोध्या में गए, वहां पर भी भीतर में राम के हृदय, और देखा है रामचंद्र जी का जन्म हुआ, वही मालपुआ दिखला रहे हैं बुला रहे हैं। फिर रामचंद्र जी ने हंस दिया तो बाहर आ गए, कहा जी अब से हमारी माया तुमको नहीं लगेगी, तब से अब माया हमको नहीं लगती है, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कृपा से आपका ये दुर्गा कथा सुनिए। तब वहीं पर बहुत दिनों तक कथा सुने, तब जाकर के उनका संदेह दूर हुआ, उनके चरणों में शरणागत हुए, उनको गुरु मान करके। इसलिए भगवान के प्रति शंका होना बड़ा कठिन है, गरुड़ को भी हो जाता है कि राम या कृष्ण भगवान है कि नहीं। आप लोग शंका मत करें, हमारा शास्त्र जो लिखा है, भागवत पुराण गीता रामायण जो लिखा है, पक्का ठीक है, तनिक भी संदेह न हो।
जय जय श्री राधे। ये लो रे कोई राम का प्यारा, जाऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यार, आवाज लगाऊं गली गली, नाम नाम से मिले मोती
गली गली, ले लो रे
आवाज लगाओ गली गली।
भीतरी रूप है। बाहरी रूप यह है, इस हाड़ चाम मांस के शरीर में आत्मा का भी मान कर ये मैं हूं, और जो सत्य बोला जाता है और जो किया जाता है वह बाहरी है। उदाहरण के लिए महाराज हरिश्चंद्र थे, राम के जन्म के पहले उसी कुल में सूर्यवंशी ये राजा थे, बड़े भारी दानी थे और सत्यवादी थे। कोई भी आ जाए उसको देंगे और जो बोलेंगे वो सत्य, ये उनकी प्रतिज्ञा थी। प्राण जाय पर वचन न जाए, किंतु शरीर में आत्मिमान मैं ही हूं और शरीर से मैं सच बोलूंगा। शरीर से कोई सच नहीं बोल सकता, बोल ही नहीं सकता। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? नाम बतलाएंगे, वो शरीर का नाम है, आत्मा का तो है नहीं, ये तो झूठ हो गया। तुम्हारा पति कौन है? अजय पति हमारा है, वो तो हार्ड मांस वाला है, पति तो कृष्ण है एकमात्र। कोई भी व्यक्ति इस जगत में शरीर में आत्मविमान रख करके सच नहीं बोल सकता। महाराज हरिश्चंद्र, मैं सत्यवादी हूं और दान देने वाला हूं। विश्वामित्र जी बड़े दयालु थे, आत्मानुभूति वाले थे, भगवत भक्त थे, शरीर में आत्मविमान नहीं रखते थे। उन्होंने सोचा कि इसके वंश में राम आएंगे भगवान, और इसने झूठा को ही सच मान लिया, इसलिए स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के उनको दर्शन दिया स्वप्न में, और बोले मैं तुम्हारे पास आया हूं कुछ मांगने के लिए, तो आप मांगिए। स्वप्न में ही बोले अपना राज्य हमको दे दो। अच्छा दे दिया, नींद खुल गई, ये स्वप्न था कोई बात। किंतु सवेरे जब हुआ तो विश्वामित्र वहां पर पहुंच गए। याद है कुछ हमको दिया? तो नहीं तो, अरे स्वप्न में मैं ही तो था, भूल गए? हाँ तो ठीक है, आपने स्वप्न में हमसे राज मांगा था तो दे दिया, राज तो दे दिया, संकल्प का दक्षिणा तुमने दिया नहीं। कोई कुछ करता है तो दक्षिणा होता है, विवाह कराता है जो ब्राह्मण उसको दक्षिणा दिया जाता है, यज्ञ कराता है उसको दक्षिणा दिया जाता है। तो तुमने राज्य दान किया और हमने संकल्प किया तो उसका दक्षिणा दे दो। उन्होंने खजांची का 10 लाख सोने की मुद्राएं इसको दे दो। अरे झूठे महाराज, जब राज्य मेरा हो गया तो खजाना भी तो मेरा है, तेरा कहां रहा? अब उनको याद आया, ये तो बात ठीक कर रहा, तब अब तो मेरा कुछ नहीं है, तो अच्छा तो मैं अपने को बेच करके आपको दूंगा। ओ ये शरीर को अपना समझता है, अच्छा ठीक है, हमारे राज्य में अपना बिक्री मत करना, दूसरी जगह कर। तो देखा जैसा हमारा तो सब जगह राज्य है, कहां बेचे? अब बड़ी चिंता में पड़े, कोई उनको जगह ही नहीं मिली जो बेचे। तब फिर उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी ने, अच्छा काशी हमारे राज्य में नहीं है, तुम जाओ, वो शंकर जी के त्रिशूल पर बसी है, वो शंकर जी की पूरी है, वो हमारे राज्य तुम्हारे राज्य में नहीं, इसलिए वहां गए और कोई ने उनको नहीं लिया। आखिर एक डोम ने, विश्वामित्र जी ही डोम के अंदर में प्रेरणा करके और उसको 5000 सोना की मुद्राएं ने बिकवाई। 5000 और रह गया तो एक ब्राह्मण ब्राह्मणी बनाकर और उन दोनों को 2500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा और उसके बन गए। हरिश्चंद्र जी भी राजा नहीं रहे, उनका राज्य तो चला गया, किंतु अभिमान है, अभिमान नहीं जाता सहज में, मैं राजा था राजा हूं। और हरिश्चंद्र, ये श्रीमती शिव्या मेरी स्त्री है, मैंने इसको बेचा, बेचने पर अब तो उसकी राह नहीं गई, और बेटे को भी बेच दिया तो भी उनका, अब मुर्दा घाटी पर वो टैक्स, जो मरते हैं आदमी उनका टैक्स वसूल करने के लिए काम में लग गए, रात में पहरा दे रहे थे और सर्प बनकर उनके बेटे को काट दिया, रोहिताश्व मर गया। अब उनकी स्त्री बिलखती हुई रोहित को अपने गोदी में लेकर के श्मशान घाट गया। भयानक काली रात, बरसात,
वर्षा हो रही, जारे की रात, ठीक ठीक हवाई, पास में एक पैसा नहीं है जो कफन के लिए भी पैसा दे, ऐसे ही देखो कौन है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देखा क्या बिजली कड़की और चमकी, देखा जैसे मेरा पुत्र मरा हुआ और मेरी पत्नी ये सभ्य लेकर के आई है, आंखों में आंसू आ गए, मेरा पुत्र मर गया और ऐसी असहाय अवस्था में लेकर के आई है, किंतु फिर भी हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, काज हम ऐसे परवाह नहीं करने देंगे, तुम कुछ टैक्स दे करके और इसका प्रभाव करो। बड़े कठोर बन गए। अब वो क्या करे, कुछ तो है नहीं, अपना अंचल फाड़ रहे, फाड़ करके यही उसको देंगे। जब फाड़ने लगी इतने में विश्वामित्र जी, धर्मराज और सब लोग वहां पर उपस्थित हो गए। अब देखो तुम्हारा पुत्र नहीं रहा, तुम्हारी स्त्री नहीं है, तुम उसमें अभी पर भी मान है कि मैं उसका पति हूं, मेरा पुत्र है, मैं ईश दिया है, सत्य को समझो, अच्छा बर मांग लो कुछ, ऐसी परीक्षा और न की जाए कलयुग में, कलयुग में ऐसी परीक्षा न हो सतयुग में, ठीक है। किंतु मैंने ये सब किया तुम्हारे ऊपर में दया करके, समझो तुम ये शरीर नहीं हो, रोहिताश्व तुम्हारा पुत्र नहीं, अपने कर्म के फल से तुम्हारे यहां जन्म लिया और फिर मर करके फिर दूसरे के यहां जाएगा, तुम भी मर करके कहीं जाओ, ये जो सत्य का पालन तुमने जो किया इससे अधिक अधिक स्वर्ग में गति होगी, अत्यतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशाले क्षीणे पुण्य मत लोकम विषम एवं त्रयी गतागतम काम काम आगत। तो इससे इतना कठोर जो तुमने किया इससे क्या होगा, स्वर्ग में जाएगा और भोग करेगा, कुछ दिनों के बाद में तुम्हारा भोग समाप्त हो जाएगा, फिर गधा सुकर कुकर होगा। इसलिए इन धर्मों पर आश्रय मत करो, ये बाहरी रूप है। रोहिताश्व को कहा तुम जी उठो और जी गया, जाओ तुम अब राजा हो। मैया को जिला, मैया को भी कहा कि मैया बेटे के साथ में, और हरिश्चंद्र को ऐसा उपदेश दिया कि भगवान का भजन करने के लिए सब छोड़ करके वन जंगल में चले। अब समझा सनातन धर्म किसको कहते हैं, भक्ति को कहते हैं भगवान, यही आत्मा का स्वरूप धर्म है, परम धर्म है भगवान का भजन का। और भी हमारे भारतवर्ष में बहुत अच्छे ऊंचे आदर, सत्री सावित्री सत्यवान को भी आप लोग जानते हैं, एक ब्राह्मणी थी अपने कोढ़ी पिता पति के लिए रक्षा, सूर्य की गति को रोक दिया, ऐसे ऐसे उदाहरण पति, किंतु उनकी गति कहां तक है, स्वर्ग और इसके बाद में किसी किसी का स्वर्ग महाजन लोकता, बस इसे ऊपर, इसके ऊपर में गति नहीं है, वहीं तक खत्म। पतिव्रता का मूल्य वहीं तक, सच बोलने का मूल्य वहीं तक, स्वर्ग तक, और फिर लौट करके आना। और भक्ति का मूल्य, यदि मरते समय एक नाम भी किसी प्रकार से निकल गया, अपने बेटे के लिए निकल गया, अपनी गाय का नाम राधा रख दिया है वो निकल गया, अपने कुत्ते का नाम राम रखा है वो भी निकल गया है, तो भी उसे मुक्ति हो जाएगी। अजामिल भगवान का नाम नहीं किया, मरते समय डर के मारे जम के दूतों को देकर के हाँ नारायण 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 याद आ गया उसका बेटा, और भगवान ने उसको ले लिया नारायण के नाम, मृत्यु को पार कर गया। फिर पीछे हरिद्वार में गया और अब शुद्ध नाम हरे नारायण नमो नारायण आये करते हुए बैकुंठ पधारा। ये शुद्ध भक्ति है अत्यंत सहज रूप। इसलिए आप लोग दधीची का नाम सुना होगा, बड़े उच्च कोटि के ऋषि थे, वृत्रासुर का वध करने के लिए देवताओं ने उनसे उनका हाड़ मांगा,
जिंदा अवस्था में
ही अपना हाड़ दे दो। तो वहां से बोले जैसे देवता लोग बड़े स्वार्थी तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए और हमारी जीवित अवस्था में हाड़ मांग रहे हो, और फिर भी उन्होंने दान कर दिया, गाय को मंगवाया अपने शरीर में दही और भूरा लपेट दिया और गाय चाट गई, सब कुछ चाट गई, बस हाड़ रह गया, उसे वज्र बना तो उसे वो मारा। उनकी गति कहां तक है? महर तक, महर्षि लोग, बस और अधिक नहीं, फिर आना पड़ेगा। ब्रह्मलोक तक जो है गति, वो वहां का सबको आना जाना पड़ेगा। किसको नहीं आना पड़ेगा? एक मुक्ति वाला नहीं आएगा और एक भक्ति वाला नहीं आएगा। मुक्ति वालों को किस लिए? उनको दंड देने के लिए उनको ये दंड दिया जाता है, भगवान दंड देते हैं कि तू पत्थर हो जा, कोई अनुभूति नहीं रहेगी, इसको मुक्ति कहते हैं शाही। इसलिए भगवत भक्त लोग मुक्ति देने पर नहीं लेते। असल में मुक्ति वह है जो इस स्वरूप को छोड़ करके भगवान के चरणों में भक्ति हो, ये मुक्ति है जथा। और वो है राक्षसी मुक्ति, उसको भक्त लोग भगवान के देने पर भी नहीं लेते जरूरत। इसलिए मुक्ति से सावधान रहेंगे। मुक्ति लेंगे कैसी? भगवान के चरणों में भक्ति सेवा, ये मुक्ति। वैसे ही शिवी को जानते होंगे, एक कबूतर के लिए बाज से रक्षा करने के लिए अपना मांस काट काट करके तौल करके दिया, अंत में अपने को सब चढ़ा दिया तो भी पूरा नहीं हुआ। उनकी गति कहां तक? वही तक। इसलिए दान की भी गति यही है, किंतु दान मत दो। अपने पिता को मान लिया कि जैसे उनके लिए कपड़े बाजार से ले आए, तो उनको दान देते हो ना क्या करते हो? पिता की संपत्ति भोग रहा है, उसमें से लेकर के उनकी सेवा कर सकता है, उनको क्या दान देगा? तो ये सारा विश्व तो प्रभु का है, उनको दान क्या देगा? दान मत दो, सेवा के लिए दो, सेवा करो। हम जो कुछ यदि किसी को देते भी हैं तो इस रूप में दो, दान मत दो, उसका फल भोगना पड़ेगा, सेवा के लिए, भगवान सेवा के लिए, प्रसाद के रूप में। ऐसा ये तो बाहरी रूप बतला है, अभी से रूप के भी कुछ उदाहरण बतला। महाराज अम्बरीश अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माजनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्त। कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा सभी करते हैं भक्त लोग, किंतु उसमें तारतम्य है। कैसा तारतम्य? ध्रुव जी ने कठोर तपस्या की, नारद जी आए उनको मंत्र दिया, उनकी कथा तो आप लोग जानते होंगे। ध्रुव जी छोटे बच्चे जब थे, उनकी एक विमाता भी थी और उसका पुत्र उत्तम था, और ध्रुव की माता का नाम सुनीति था। जब वो 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उत्तम को अपनी गोदी में महाराज प्रियव्रत ही नाम था उत्तानपा गोदी में लेकर के और उसे लाड़ प्यार कर। ध्रुव ने कहा कि मैं तो बड़ा बेटा,
मैं भी पिता की गोदी में आऊं, तो पिताजी भी लेने लगे गोदी में और ये चढ़ने लगा, तो उसकी मैया बिगड़ गई, सुनीति सुरुचि जाओ मरो, मर करके फिर हमारे गर्भ में आना, तो राजा की गोदी में बैठना, इस जन्म में नहीं। रोने लगा, रोते रोते अपने मैया के पास आया, राजा जी चाह करके भी नहीं ले सके, वो दूसरी पक्ष की स्त्री थी, अभी सुंदरी थी, नवजुवती थी, राजा उसके वशीभूत में रहे, और वो भक्तिमती थी, पहली वाली भगवान की भक्ति कर, उसके पास में रोते रोते गया, क्यों रो रहे हो? बच्चों ने बतलाया कि इसलिए रो रहा है, पिताजी के गोदी में जाना चाहता था, पिताजी ने नहीं दिया। अरे तुम इसके लिए रो रहे हो? अरे तुम्हारा भैया है श्रीहरि, उसका नाम है, वो वन में है, जाओ उसे पुकारो, उसे बड़ा राज्य दे देगा। बस आधी रात में उठा और मथुरा में गया, मधुबन में, वहीं पर ध्रुव घाट है, अभी ध्रुव टिल्ला है, और भगवान की उपासना करेगा श्रीहरि को, तो भगवान ने नारद जी को जाओ उसकी सहायता करो। नारद जी आए, बोले बच्चा कभी सिंह भालू तुमको खा जाएगा, पिता की बात पर तुमको इतना क्रोध हो गया जी, चला जाओ जाओ लौट जाओ, नहीं आप नहीं लौटेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मरेंगे बचेंगे किंतु अब हरि को पाकर कहीं रहेंगे। तब फिर उन्होंने नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, मंत्र देने के बाद में मधुबन है पासी, जमुना से स्नान करके वहां गए ऊंची भूमि पर, और वहां पर 6 महीने के अंदर में निराहार रहकर, ऐसा कोई कठोर तपस्या नहीं कर सकता, भगवान का मंत्र जपने लगे। पहले महीने में कुछ फल मूल खाए, दूसरे महीने में छोड़ दिया, पानी पिए वो भी 5-5, 6-6 दिन अंतर, पानी भी छोड़ दिया, हवा पीने लगे, केवल श्वास लेते, हवा भी श्वास लेना भी छोड़ दिया 6 महीने में, और अचल समाधिस्थ हो गए भगवान, भगवान ने उनको दर्शन दिया, और दिया जो 36,000 वर्ष तक सारी पृथ्वी का राज्य भोग गए भगवान। अंतर ध्यान जब हो गए तब रोने लगा, अरे मैं खोज रहा था कांच और सौभाग्य से हीरा मिल गया, स्पर्श में मैंने उसे खो दिया, उसे ये 36,000 वर्ष हमारा बेकार का गया, क्यों मांगा? किंतु जो होना सब हो गया, जो इच्छा थी 36,000 वर्ष का राज्य पाया। अंत में 36,000 वर्ष में जबकि उसकी सदगति होने लगी, क्योंकि भगवान का दर्शन पाया था, तो उसको विमान आया ले जाने के लिए, तो उसने कहा मैं अकेला नहीं जाऊं, मेरी मैया को छोड़ करके नहीं जा, और मैया में भी अभी आत्मा, तुम्हारी मैया जा रही है देखो, तो उनको ध्रुव लोक की गति हुई, इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत में उत्तर की तरफ में ध्रुव को ही सूर्य परिक्रमा करता है, वो ध्रुव लोक मिला, वो भगवान की सेवा नहीं मिली, इसलिए यह शुद्ध भक्ति नहीं है। कोई भी संसारी कामना वासना के लिए भगवान का भजन करके उसको प्राप्त करने से भी शुद्ध भक्ति नहीं कहा, इस चीज को समझ। इसलिए संसारिक सब प्रकार की कामनाएं छोड़ो, और क्या मांगो? आपके चरण में अहेतु की भक्ति हो, और वो भक्ति ज्ञान कर्म जो तपस्या के द्वारा आच्छादित न है। मतलब क्या? माता पिता की सेवा करने से ही भक्ति होगी, ऐसा विचार रहने से शुद्ध भक्ति नहीं है। माता पिता यदि वैष्णव है हो जाए, सब वैष्णवता के ऊपर में मिलता है। यदि शंकर को सती जी या उमा पति समझती हैं और गुरु समझते हैं तो ये ठीक है, इस जगत में भी पति यदि परम भक्तमान हो, उसको पति के रूप में या गुरु के रूप में कोई देखे तो उसको भक्ति हो सकती है। वैसे ही स्त्री यदि वैसी हो तो अपने पति को भी लेकर के शुद्ध भक्ति में ले जा सकती है। इसलिए ध्रुव जैसी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है, यह कर्म मिश्रा भक्ति का है। अब इसे आगे बढ़ो थोड़ा सा, अधिक बोलने से हमको गड़बड़ होता है ना, इसलिए हमको याद दिलाते हैं। कभी हमको भी बोलने की कुछ अधिक इच्छा रहती है। तो प्रहलाद महाराज जी को चलो, अच्छा प्रहलाद महाराज जी करो। प्रहलाद महाराज जी का चरित्र थोड़ा संक्षेप में बतलाओ ना। प्रहलाद महाराज जी वो पिता से झगड़ा हो गया, ये सब समय हरिनाम करता था, उनका स्मरण करता था, और उसका पिताजी था हिरण्यकश्यपु, हिरण्य माने सोना, कश्यप माने बिछौना। सोने पर ही जिसकी दृष्टि सब समय रहती है, अर्थात वो अर्थ पर और अर्थ का अतिरिक्त इधर उधर नहीं जाती, उसका नाम है हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद महाराज जी के कहने पर भी, उनके कहने पर भी इन्होंने हरि नाम नहीं छोड़ा। सांप से डसवाया, हाथी के पैरों ले गए, समुद्र में फेंकवा दिया, पहाड़ पर्वत से फेंकवाया, आग में जलवाया, उसकी बहन जल गई वो नहीं जला, विष दिया, किसी प्रकार से नहीं मार सका। फिर किसके बल पर तू हमारा विरोध कर रहा है, तो तुम्हारा जो है वही मेरा है, वो प्रभु है। अच्छा तो तुम्हारे प्रभु कहां है, देखो तो कहां है, सर्वत्र है, खंभे में है, कहां खंभे में है। अच्छा बस गदा लेकर के या मुस्तिका भास से ऐसा मारा कि वो पत्थर का वो खंभा एकदम चूर्ण विचूर्ण हो गया, और उसमें से भयंकर आवाज आई, सब लोग कांप उठे। उसमें से मनुष्य भी नहीं, सिंह भी नहीं, नृसिंह भगवान नहीं, नीचे का मनुष्य, ऊपर वाला भाग सिंह, और उसको एक क्षण के अंदर में पकड़कर और जंघे पर बैठाकर, घर के बाहर नहीं, भीतर नहीं, दहली के ऊपर, दिन में नहीं, रात में नहीं, शाम को, अस्त्र से, शस्त्र से नहीं, नखों से, और
महीना में नहीं,
किसी महीने नी, वो लीप ईयर था,
मलमास,
और एक सेकंड में
ब्रह्मा
बड़े आग निकल रही जटाओं से, क्रोध नहीं शांत हुआ, उसके मरने के बाद भी क्रोध नहीं शांत हुआ। ब्रह्मा जी शंकर जी आकर के देख रहे, लक्ष्मी जी भी नहीं आई। उस समय प्रहलाद महाराज जी को ब्रह्मा जी ने, बेटा अपने पिता को शांत करना है तो ब्रह्मांड को लय कर दे, और वो डरता हुआ उनकी गोदी में बैठे पिता जैसे, उनका क्रोध शांत हो गया और बोले जो प्रहलाद बर मांगो, तुम्हारे पिताजी ने चरण में अपराध किया, उनको क्षमा करके उनको गति कर, तो वो तो अपने आप हो जाएगा। जिस स्कूल में तुम्हारे जैसा हो बेटा, उस स्कूल का 21 पीढ़ी के लोगों का, माता पिता सबका उद्धार होगा, और मध्यम का हो 14, और कनिष्ठ भी वैष्णव हो शुद्ध, तो उसके भी सात पीढ़ी के उद्धार हो जाता है। इतनी महिमा है वैष्णवों की जिस स्कूल में हो। उन्होंने कहा वो तो हो गया, तुम और मांगो। तो उन्होंने कहा वर मांगने की कोई इच्छा है तो वो नष्ट हो जाए।
मैं बनिया नहीं हूं जो कुछ दे करके उससे ले लू। बनियागिरी करने के लिए आपकी भक्ति नहीं की, बस आप प्रसन्न हो मांगने की कुछ इच्छा और समाप्त हो, ये भी हो जाए और मांगो। उन्हें जगत का जितना दुखी लोग है उनका दुख लेकर के मैं भोग करूं करोड़ों जन्मों तक, और हमारी भक्ति को लेकर के मुक्त हो जाए। तू हार जीत गया मैं हार गया, हमारी कथा जो कहेगा सुनेगा वो। प्रहलाद महाराज जी ऐसे शुद्ध भक्त, किंतु गड़बड़ी है, उनके प्रभु को भूख नहीं लगती, निशिंग को भूख लगती है, भूख नहीं, उनके पैर थकते नहीं है जो पैर पलोटे, भूख तो लगती नहीं है तो खिलाएंगे क्या, जड़ा ठंड लगता नहीं है, इसलिए क्या सेवा करें, बस स्मरण करते हैं। इसलिए इनसे भी कुछ भक्ति श्रेष्ठ है वो कल बतलाएंगे, धीरे 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 स्तर पर ले चलेंगे, ये सनातन धर्म का स्वरूप। गौ प्रणामते आरती की व्यवस्था कर।
गोविंद बोलो हरि गोपाल।